अध्याय दो श्लोक संख्या 56 2.56 दुःखेष्वेनु द्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वितरागभय क्रोध स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की
जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोर् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है कि नहीं? अभी कितने लोग आए आज के सत्संग में? संकल्प के पक्के होना चाहिए। शीतोष्ण सुख दुख दाह, शीत हो या उष्ण हो, बारिश हो या ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, श्रवण करना चाहिए। हमने 54वें श्लोक में हमने देखा था क्या? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधिम किम प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम, है ना? चार प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे। पहले प्रश्न का तो उत्तर पहला श्लोक हो गया है 55। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है? स्थित धी किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है? तो कैसे बोलता है उसका भी चर्चा थोड़ा बहुत हुआ है कि कैसे बोलता है, मतलब क्या बोलता है, क्यों बोलता है और कैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्यों बोलता है, कैसे बोलता है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। परंतु इस श्लोक में भगवान विस्तारित रूप से उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का। कौन से? किस कैसे बोलता है, किम प्रभासेत, किस प्रकार से वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बोलता है। तो हमने चर्चा के दौरान चर्चा की थी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, कृष्ण के विषय में बोलता है। कैसे बोलता है? स्थिति काल परत्वे बोलता है, व्यक्ति विशेष को देखकर स्थिति के अनुसार समय के अनुसार व्यक्ति को बात करता है। क्या बोलता है? कृष्ण कथा बोलता है, केवल कृष्ण कथा ही बोलता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये आता है, यहाँ भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो कैसे बोलता है। वहां इसमें कह रहे दुखेश्वनु दुखेश्व अनुद्विग्न मनः उद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह। तो भगवान जो उपदेश दे रहे उसमें सबसे पहला शब्द वो बता रहे हैं दुखेश्वनु उद्विग्न मनः, अर्थात जिसका मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता है, जिसका मन दुखों से उद्विग्न नहीं होता है। अर्जुन ने कहा है, प्रश्न पूछा है कि ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्त है, वो कैसे बोलता है। उसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं जिसका मन दुखों में दुखों से उद्विग्न नहीं होता है, अर्थात इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के दुख है। एक प्रकार का दुख है क्या? भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के दुख है, और दुखों में फंसे रहने के कारण, उन दुखों में फंसे रहने के कारण किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वो सदा कृष्ण के विषय में बोले, है कि नहीं है संभव? पहले हम जब चर्चा किए तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि वो क्या बोलते हैं, उत्तर में कहा गया है कि वो कृष्ण कथा बोलते हैं। पर यहाँ पे जो हम पहला भगवान का उपदेश का इस श्लोक का पहला जो शब्द है दुख, अर्थात इस भौतिक संसार में फंसे हुए रहने के कारण यह संभव नहीं है कि नित्य कृष्ण के विषय में बोले, क्योंकि जब दुख आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, सब भूल जाते हैं। मान लो कोई बहुत महत्व की इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, जिससे हजारों लाखों रुपए का फायदा हो रहा हो, तो सारे काम छोड़ के व्यक्ति तुरंत कृष्ण कॉन्शियसनेस को भूल के तुरंत मीटिंग की ओर दौड़ पड़ता है है कि नहीं? दुख हो या सुख हो, पर विशेषकर दुख में यदि मान लो इतना डेस्परेट, क्योंकि धन नहीं है ये बहुत बड़ा दुख है, इस धन को प्राप्त करना है, कितना कितना धन प्राप्त करना है, अनलिमिटेड अमर्याद, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना धन प्राप्त करना है और वो नहीं है इसलिए दुख है, और वो दुख के कारण ये संभव नहीं है कि केवल कृष्ण 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 करते रहे। परंतु जो भक्त होते उनकी बात कुछ और होती, वो दुख में भगवान को ज्यादा याद करते हैं, दुख में भगवान का ज्यादा स्मरण करते हैं। उदाहरण कुंती महारानी, वो कहती है कि हे भगवान आपका स्मरण हमको नित्य रहे, इसलिए जितने हो सके उतने दुख दो, जितने दुख आप दे सकते हो उतने दुख दो, क्योंकि उससे हमको आपका स्मरण हो। ये भक्तों की बात है, परंतु किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। जो साधारण है उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि जो कृष्ण भावना विषय या कृष्ण के विषय में बोलता रहे। क्यों? क्योंकि वो दुखी है, दुख में फंसे रहने के कारण ये सब प्रॉब्लम होता है। अब दुख क्यों आते हैं, इसके पहले श्लोक में थोड़ी चर्चा हो चुकी है। दुख का मूल कारण क्या है? किसकी आसक्ति? हाँ, इंद्रिय तृप्ति की असंख्य कामनाएं, इंद्रिय तृप्ति की अनलिमिटेड डिजायर्स, इंद्रियों को तृप्त करने की करोड़ों लाखों अब्जों कामनाएं होने के कारण दुख आता है। और इस प्रकार से जब दुख आता है तो कृष्ण का कैसे स्मरण होगा, बताइए आप। आप सोचिए, हो सकता है किसी कारण से हमको यदि कुछ फल मिलने वाला हो, मान लो कुछ धन मिलने वाला था, परंतु किसी कारण से वो मिला नहीं है, आज सुबह उसके लिए गए थे उस मीटिंग के लिए, मीटिंग फेल हो गई, अब वो लाभ नहीं होगा, अब क्या होगा, दिन भर वो विचार रहेंगे, कृष्ण के विचार नहीं रहेंगे, वो विचार रह गए। इसलिए इस श्लोक में भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं, दुखेश अनुद्विग्न मनहा, दुख और उद्विग्नता इसकी चर्चा भगवान इसमें कर रहे हैं। साधारणतः जो जीव भौतिक आसक्तियां या इंद्रिय तृप्ति की कामना जो जीव रखते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही उनको थोड़ा मोटा छोटा मोटा दुख आ जाता है, वो कृष्ण को भूल जाते हैं। और जो भक्त होते हैं, उनको छोटा से छोटा दुख या सुख कुछ भी आए, वो नित्य कृष्ण का स्मरण करते हैं। ये फर्क है। तो ये जो कह रहे वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो नित्य कृष्ण के विषय में बोलते हैं, चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितना भी दुख आए, वो नित्य कृष्ण के विषय में ही चर्चा करते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं का उत्तर है, परंतु दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे लोग दुख में जकड़ जाते हैं और दुख को और बढ़ाते रहते हैं। कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है, मान लो उसके ऊपर दुख, ऐसा तो नहीं है ना कि जो कृष्ण कॉन्शियस है उसके ऊपर दुख आता ही नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। दुख तो सभी को आता है, दुख और सुख वो एक ही पैकेट है, एक पैकेट में मिलते हैं, दोनों अलग अलग नहीं मिलते। वो तो सुख लिया ना आपने, दुख आएगा ही आपको, क्योंकि एक साथ ही आता है, वो अलग अलग नहीं हो सकते। तो जो भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, उनको भी दुख आता है, ऐसा नहीं है उनको दुख नहीं आता है। परंतु उस दुख को वो क्या समझते हैं, उस दुख को भी वो समझते हैं कि ये भगवान कृष्ण की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा के कारण ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए उसको प्रेम से स्वीकार करते, उद्विग्न नहीं होते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो दुख तीन प्रकार के होते हैं साधारणतः, सभी को पता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये दुख जो है इस भौतिक संसार में सभी को मिल जाते हैं, फ्री है, सभी को फ्रीली मिल जाते हैं, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, सभी के लिए फ्री है। तो जो आध्यात्मिक दुख होते हैं, वो आध्यात्मिक दुख की व्याख्या क्या है, आध्यात्मिक दुख उन दुखों को कहते हैं जो अपने ही शरीर से और अपने ही मन से उत्पन्न होते हैं। आदि आत्मिक, अपने ही शरीर से, स्वयं से ही और अपने ही मन से जो उत्पन्न होते हैं उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं, है ना, आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक शरीर से जो उत्पन्न होते हैं, तो शरीर से उत्पन्न वाले होने वाले दुख कौन से हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, कष्ट, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और कष्ट, दुख, शारीरिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तो शरीर से जो दुख उत्पन्न होने वाले जो है वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि कष्ट। मन से उत्पन्न होने वाले दुख कौन से हैं, अपने ही मन से, अपने ही शरीर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अपने ही मन से, अपने ही मन से जो दुख उत्पन्न होते वो है काम क्रोध लोभ ईर्ष्या और चिंता, है कि नहीं, ईर्ष्या भी होती है ना हमको, ईर्ष्या और चिंता, ये किसके दुख है, किससे उत्पन्न होते हैं दुख, अपने ही मन से, अपने ही शरीर से होते हैं, अपने ही मन से होते हैं, और बुद्धि से क्या उत्पन्न होते हैं, अपने ही बुद्धि से भी उत्पन्न होते हैं दुख। बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि का काम है अलर्ट रहना, किसके प्रति, समय के प्रति, टाइम, काल, मैं समय हूं। तो काल के प्रति बुद्धि क्या काम क्या है, काल के प्रति अलर्ट रहना। परंतु यदि काल के प्रति, समय के प्रति हम अलर्ट नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। है कि नहीं? तो पश्चाताप करना पड़ता है। दुख, बुद्धि का दुख कौन सा है? बुद्धि से उत्पन्न होने वाला दुख पश्चाताप है ना। तो शरीर से उत्पन्न होने वाला दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मन से उत्पन्न होने वाला दुख क्या है? काम क्रोध लोभ ईर्ष्या और चिंता। बुद्धि से उत्पन्न होने वाला पश्चाताप करना पड़ता है। और ये तीनों दुख कौन से है? आध्यात्मिक, अपने से ही तैयार होते हैं, हम ही उसको क्रिएट करते हैं, दूसरे करते नहीं है। दूसरे उसको नहीं बनाते उस दुख को, हम ही अपने दुख को हम स्वयं बनाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, परंतु कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, वो क्या करता है? अपनी पहचान अपने शरीर से नहीं करता है, वो स्वयं की जो आइडेंटिटी है, जो अपनी स्वयं की जो पहचान है, वो शरीर से पहचान नहीं करता। जब वो शरीर से पहचान ही नहीं करता है तो शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख को अपना दुख नहीं मानता। वो क्या कहता है? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब वो ये बोलता है तो शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख की वो चिंता नहीं करता है, शरीर से उत्पन्न होने वाले जन्म को नहीं, शरीर का जन्म होता है पर उस जन्म को, शरीर के जन्म होने से अपने जन्म को नहीं मानता है। वो शरीर का जन्म हुआ इसका अर्थ मेरा जन्म हुआ ऐसा नहीं है, शरीर का जन्म हुआ इसका अर्थ मेरा जन्म हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा अजन्मा है, है कि नहीं? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दुखी क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अपने को शरीर नहीं मानता है, वो मानता है मैं आत्मा हूं, है कि नहीं? जब मैं आत्मा हूं तो शरीर का जन्म होने से मैं दुखी क्यों हूं? दुखी होने का कोई प्रश्न नहीं है। तो शरीर का जन्म होने से वो अपना जन्म नहीं मानता, मृत्यु पे मृत्यु नहीं मानता, शरीर का मृत्यु होने पे मृत्यु नहीं मानता। देखिए मृत्यु तो सबसे भयानक चीज है, बड़ी दुखदायी चीज है, पर उसको भी नहीं मानता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा अजन्मा है ना। उसको नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, ना उसको कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना भिगा सकता है। तो ना तो वो मरने से मृत्यु मानता है, ना जन्म से वो जन्म को मानता है, शरीर के जन्म से अपने जन्म को नहीं मानता है, शरीर के मृत्यु से अपने मृत्यु को नहीं मानता है, शरीर का शरीर के बुढ़ापे से अपने बुढ़ापे को नहीं मानता है, कि नहीं? और शरीर की व्याधि, शरीर को जो तकलीफें होती है, कष्ट होते हैं, उन कष्टों को अपने कष्ट नहीं मानता है, केवल मानता ही नहीं, जानता भी है और मानता भी है, समझता है अच्छी तरह से, फिलोसॉफी तत्व ज्ञान आत्मज्ञान, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, बेसिक प्रिंसिपल है कि नहीं? मुख्य तत्व क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए कई बार पहले अध्याय में, इंट्रोडक्शन में और दूसरे अध्याय में हमने ये बात अभी तक हजार बार बोली होगी, कौन सी? इसलिए महामंत्र सुबह उठते उठते जब जप करते उसके पहले एक माला जप इसकी करनी चाहिए। क्या? तीन बातें ध्यान में रखना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये संसार अस्थिर है, ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार तो ये हो जाता है, भले ही हम जानते हैं संसार अनिश्चित है, अस्थिर है, लेकिन भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं संसार ही सब कुछ है, इसके अलावा दूसरा सब बोगस है, संसार बेस्ट, बाकी सब वेस्ट, बाकी सब बोगस, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए जप करने के पहले इन तीन बातों का एक माला जप करना चाहिए, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये संसार चलायमान अस्थिर है, नो गारंटी वाला है। उसमें और दो बातें ऐड कर सकते हैं, वो तो जप में हो ही जाती है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, डोंट फॉरगेट कृष्णा। पर पहले ये तीन बात ध्यान में रखें, कौन सी, सब बोलिए, जब जब भी आप इस इन तीन बातों को याद कर सकते याद कर लेना, जब भी दिन भर में, क्योंकि बहुत जरूरी है। तब जब तक हम इसका ज्यादा चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे। ये तीनों बातें हम दूसरों के लिए मानेंगे, अपने लिए नहीं मानेंगे, हाँ। इसलिए ज्यादा गंभीरता इन बातों में आनी चाहिए, गंभीर होना चाहिए इन बातों में। इसलिए तो यही तो फर्क है भक्त में और इतर जीवों में, यही फर्क है, यही तो बताया जा रहा है। आध्यात्मिक दुख है, सभी को दुख आते हैं, लेकिन भक्त को जब दुख आता है तो उसकी परिस्थिति कैसे अलग होती है। अर्जुन कह रहे हैं कि जब इतना दुख होता है जीवों में, इस संसार में जीवों को इतना दुख होता है, इतना दुख होते हुए भी कोई कैसे कृष्ण का नाम जप कर सकता है, कोई कैसे कृष्ण के विषय में बोल सकता है। इसलिए वो पूछते कि वो क्या बोलते हैं, तो भगवान कहते वो यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, वो यही बोलते हैं। पर वो ऐसा क्यों बोल सकते हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते और वो क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वो शरीर को शरीर नहीं मानते, सॉरी शरीर को मैं नहीं मानते, मैं आत्मा हूं, शरीर को मेरा नहीं मानते, शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर प्रकृति है, चलायमान सब खत्म होने वाला है। इसलिए शरीर से उत्पन्न होने वाली व्याधि उपाधि सब कुछ बॉडी, बॉडी को नहीं मानते। बॉडी अर्थात बी फॉर बर्थ, ओ फॉर ओल्ड एज, डी फॉर डेथ और वाई फॉर यमराज, बॉडी बी ओ डी वाई, इसको वो नहीं मानते। वो क्या मानते हैं, मैं आत्मा हूं। जब वो शरीर को नहीं मानते अपना, तो शरीर से उत्पन्न होने वाले सारी व्याधियों को वो नहीं मानते हैं, और यही उनकी विशेष पहचान है। वो अपनी पहचान शरीर के साथ नहीं करते बल्कि कृष्ण के साथ करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूं। पहले इस तत्व को जान लेते हैं, जब तक इस तत्व को कोई जान नहीं लेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। केवल भगवत गीता एक चर्चा का विषय बन जाएगा बस, जीवन में जीवन को बदल नहीं कर, जीवन को बदल नहीं सकता है। फिर वो यदि जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान से गंभीरता से अप्लाई करना चाहिए। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति शरीर के बूढ़े होने पर अपने को बुढ़ापा बूढ़ा नहीं समझता है, क्योंकि वो आत्मा है शरीर में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो क्या हम ये समझ पाएंगे, क्या ऐसा ही हम समझ पाएंगे? समझने में कोई डिफिकल्टी है? सेम दुख चाहिए, चाहिए क्या दुख चाहिए, हाँ चाहिए लगता है कि नहीं चाहिए, चाहिए, चाहिए? अच्छा यदि वास्तव में दुख से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं तो पहला प्रिंसिपल ये ध्यान में रखिए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। सांसारिक दुखों से देखिए, जो संत पुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, दुख आने पे भगवान का स्मरण करते हैं। पर अर्जुन का जो ये प्रश्न है यहाँ पे, अर्जुन ये कह रहा है कि ये जीव संसार में इतना फंसा हुआ है कि दुख आने पे ये भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा होता है बहुत बार, हम देखते हैं दुख में कोई कैसे भगवान को इतना स्मरण कर सकता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम भी ये समझे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और शरीर से उत्पन्न होने वाला जो कुछ भी है वो मेरा नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम ये समझेंगे कि ये शरीर से जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला है वो मेरा नहीं है, ये बात को समझने में कोई डिफिकल्टी है? है कि नहीं है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख चंचल है, अस्थिर है, चलायमान है, स्थिर नहीं है। वो मेरे नहीं है, शरीर के हैं। क्या इस बात को हम 100% समझ गए? नहीं समझे। क्या नहीं समझे उसमें? क्या नहीं समझे? क्यों टाइम लगता है? क्यों समझे नहीं इसीलिए तो टाइम लगता है? समझे नहीं इसीलिए टाइम लगता है ना, फिर भूल जाते हैं। वही तो तकलीफ है, तो वही तो तकलीफ है ना। परिस्थिति में ही तो याद रखना पड़ता है, परिस्थिति में ही तो स्मरण में रखना पड़ता है भाई। जब ये भगवान भगवत गीता युद्ध के समय में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इतनी इमरजेंसी की जब परिस्थिति आती है तभी तो वो याद करना पड़ता है। और हमारा एकदम उल्टा क्या है, जब परिस्थिति उत्पन्न होती तभी हम भूल जाते हैं। तो कैसे भगवत गीता हमारे जीवन में अप्लाई होगी? होगी क्या? ऐसे से तो भगवत गीता के हम हजारों वर्ष तक क्लास लेते रहेंगे और हजारों वर्ष तक हम सुनते रहेंगे और जैसे थे नहीं। हाँ तो क्या डिफिकल्टी है इस बात को समझने? क्यों अप्लाई नहीं होती है बात? हाँ भयंकर आसक्ति तो है, और क्या है? प्रायोरिटी दूसरे चीजों की है। हाँ अभी सफिशियंट अभ्यास हो गया अभी तक ये बात समझने में। सिंपल बात है, इन बातों में पूरा विश्वास नहीं है। वेरी सिंपल। आपको विश्वास है कि जैसे उठ के बाहर गेट के बाहर गए कि 1,00,000 रुपए पड़े हैं वहां पे, 10,00,000 रुपए, 50,00,000 रुपए पड़े हैं। इस बात यदि किसी ने बताया क्या होगा? दंगा हो जाएगा, यहाँ पे सब भाग जाएंगे देखने के लिए। श्रद्धा है, विश्वास है कि वो पैसा जो है, धन जो है, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये श्रद्धा है, ये विश्वास है। परंतु तत्व ज्ञान, भगवत तत्व, जीव तत्व, ये वास्तव में सही है क्या? समझते सुनते अच्छा लगता है, मानते भी है, जानते हैं, मानने के लिए तकलीफ हो जाती है। श्रद्धा की कमी, पूरी श्रद्धा नहीं है इस बात पर, पूरा विश्वास नहीं है। 100% 50-50 है। बाकी लोगों का 50-50 भी नहीं है, हम भाग्यशाली है कि हमारा 50-50 है। एक दिन हो सकता है 100% हो जाए भगवत गीता का कोर्स पूरा होते होते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम विश्वास चाहिए। देखिए सारा खेल, सब कुछ विश्वास पे निर्भर है। कितना परसेंट हमारा विश्वास है, कौन से स्तर पे हमारा विश्वास है। एक व्यक्ति रोज सुबह 4 बजे उठ के जप करके अपना सारा कार्यकलाप, सब सुबह का प्रातः विधि पूरा करता है, अपना पूरा बिजनेस करता है, रात को वापिस आता है, थोड़ा पढ़ता है, सब समाज में भी रहता है, सामाजिक कार्य भी करता है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। इसका कारण क्या है? विश्वास, श्रद्धा। कोई व्यक्ति कहां से उठकर कहां तक यात्राओं में चलते, वो दिंडी जाएगी अभी आषाढ़ी एकादशी पंढरपुर, देहू आळंदी पूना से पैदल चल के पंढरपुर तक जाते हैं लोग। कितने दिन पता है? 20 दिन, 25 दिन, 25 दिन पैदल जाते हैं। हम पंढरपुर की यात्रा निकालते हैं तो हमारी भी श्रद्धा है, हमारी शारीरिक मर्यादा है, परंतु जो श्रद्धा है एक व्यक्ति की, इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा है, और दूसरा व्यक्ति को पंढरपुर का नाम लेते हुए, पंढरपुर क्या जा रहे हो, तो गोवा चलो देखो उसकी श्रद्धा कोई बोलता है कि हमको यात्रा के लिए टाइम ही नहीं है हमारा घर ही पंढरपुर है, बोलता है है कि नहीं? श्रद्धा, विश्वास, भाव, प्रेम, ये बहुत महत्व का विषय है। यदि हमारा श्रद्धा है तो हम इस बात को मानेंगे और जानेंगे, नहीं तो केवल जान लेंगे, मानेंगे नहीं उसको। जानना क्या है? जानना मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी प्रोफेशनल्स बहुत सारी जानकारी पास में रखी है, उसमें से मानते कितना है? हाँ, मानना पड़ेगा, जानने से काम नहीं चलेगा। केवल इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने से फायदा कुछ नहीं है। कोई वो तो कंप्यूटर भी करता है वो काम, निर्जीव है कंप्यूटर, वो भी वो काम करता है, हम लोग तो सजीव है ना, तो कंप्यूटर से कुछ अलग हटके हमारे में है। जो हम जानते हैं उसको मानने लगते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। जो जानता है बस जानता ही है कंप्यूटर, बस आगे कुछ नहीं करता है। तो इसलिए इस बात को जान लीजिए, अब मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा और शरीर और आत्मा इसमें अंतर है, और मैं आत्मा हूं। शरीर का दुखी होने से, शरीर को कष्ट होने से मुझे कष्ट नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी का जब अंतिम समय था, अंतिम समय में प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, और शरीर है तो बीमार पड़ेगा, दुख तो आएगी उस पे। तो प्रभुपाद जी बीमार थे काफी अंतिम समय में, शारीरिक जो भी शक्ति है क्षीण हो गई। बड़े वैसे देखा जाए तो वो बड़ा कष्ट का समय होता है। उनको देखने के लिए, प्रभुपाद जी को उपचार करने के लिए विदेशों से 12 डॉक्टर आए, फॉरेन कंट्री से वृंदावन में। कितने डॉक्टर आए? 12 डॉक्टर। और प्रभुपाद जी के पास आए चेक करने के लिए ये वो सब। जैसे ही प्रभुपाद जी के कक्ष में आए, प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, बहुत दूर से आप आए हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुए, आप वृंदावन में रुके हैं, वृंदावन में सब आपकी व्यवस्था ठीक हुई है ना, आपको किसी बात का कोई कमी तो नहीं है? प्रभुपाद जी अपने शरीर के दुख को और कष्ट को अपना दुख मान ही नहीं रहे। हमारे जैसा होता तो एक डॉक्टर को बोलते ब्रेन को देखो, एक को बोलते हार्ट को देखो, एक को बोलते जल्दी से जल्दी मशीन लगाओ, ऑक्सीजन लाओ, वेंटिलेटर पे रखो, ये करो वो करो। प्रभुपाद जी कुछ, बल्कि बहुत कठिन समय था प्रभुपाद जी का, अंतिम समय बहुत शारीरिक पीड़ा हो रही थी प्रभुपाद जी, लेकिन वो कुछ नहीं, वो कहे मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और दिखा रहे, वो डॉक्टर को पूछ रहे, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी दौरान प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते, देखो अभी देख लो मेरे और देख लो ये शरीर, ये शरीर के साथ ऐसा होता है। प्रभुपाद जी दिखा रहे, ये जो शरीर होता है ना उसके साथ ऐसा होता है, उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, वो बड़ा परेशान हो जाता है, पर मैं आत्मा हूं, ये समझ लो आप, ये सीख लो। इससे सिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने ये जो कहे है जीवन भर प्रभुपाद जी, क्या मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, इसका प्रैक्टिकल भी दिखाया हुआ अंतिम समय। तो ये लक्षण होते भक्त के, वो दुखों से प्रभावित नहीं होने के कारण नित्य कृष्ण के विषय में बोलता है। अर्जुन का जो प्रश्न है वो क्या बोलता है, तो नित्य कृष्ण के विषय में बोलता है क्योंकि उसको ये जो सारे दुख है भौतिक संसार के वो हैरान नहीं करते हैं, वो परेशान नहीं करते उसको सारे दुख। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, आपने देखा है जयानंद प्रभु फोटो में? नहीं देखा? देखा है आपने पर आपको पता नहीं। हाँ, जो रथ यात्रा निकलती है सारे विश्व में, जो कहीं पे भी जब रथ यात्रा निकलती है इस्कॉन की, कहीं पे भी छोटे से छोटा सेंटर क्यों ना हो, तो उस रथ पे सबसे प्रथम उनका फोटो, एक फोटो लगाया जाता है। देखा है आपने वो एक फोटो एक भक्त का? वो जयानंद प्रभु है, प्रभुपाद महाराज के शिष्य। अमेरिका में उन्होंने सबसे पहले जब प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा निकाली तो सबसे पहला रथ उन्होंने बनवाया था अपने हाथ से, एक एक वस्तु को एकत्रित करके भक्तों को बुला बुला के, और उन्होंने बहुत बड़ा रथ खड़ा किया था। जयानंद प्रभु, उनका जब अंतिम समय आया, उनको कैंसर हो गया था। जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, एडमिट थे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स पेशेंट वार्ड बॉय सभी को वो प्रवचन करते थे, सभी को उपदेश देते थे भगवत गीता और भागवत का। डॉक्टर आया कि पहले सुनो, बोलते थे एक श्लोक भागवत का भगवत गीता का। नर्स आई कुछ ट्रीटमेंट करने के पहले बोले रुको रुको, पहले सुनो अपने जीवन को बदलो, सुनो भगवत गीता भागवतम में क्या उपदेश है भगवान की। हाँ? तो ऐसे भक्त वो जब उनको पूछा गया तो वो क्या कहते हैं, उनका अंतिम समय था, अंतिम समय तक प्रचार किए, और वो कहे उनको पूछा गया तो बोले इस समय मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना का जो मुझे अनुभव हो रहा है ना, वो अनुभव इतना दिव्य अनुभव हो रहा है कि ऐसा अनुभव पहले मुझे कभी नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। श्रीला हरिदास ठाकुर, जब तक 300,000 जप नहीं करते थे, पूरा नहीं होता था, तब तक भोजन नहीं करते थे। 300,000 नाम, चौसठ 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 कितने होते हैं, 192 राउंड्स, 192 राउंड्स, 192 माला। हम लोग 64 करते हैं तो वो भी महीने में एक बार, और वो रोज 192 राउंड्स। जब तक वो राउंड पूरे नहीं होते तब तक भोजन नहीं लेते, एकदम बूढ़े हो गए, एकदम बुढ़ापा, उनसे उठते बैठते नहीं होता था शरीर से, लेकिन फिर भी जब तक वो 300,000 नाम जप नहीं करते तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते। भगवान स्वयं भगवान चैतन्य उनको एक दिन कहे कि आप अभी कोई आवश्यकता नहीं, आप ये सब आप ऑलरेडी नामाचार्य है, अभी आप इतना जप नहीं किए तो चलता है। तो बोले आपका शरीर दुर्बल हो गया है। शरीर की बात मत कीजिए, शरीर दुर्बल होने से मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहे, मेरा 300,000 नाम जप रोज होना चाहिए। हाँ? ये हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जब तक जप पूरा नहीं होगा तब तक भोजन नहीं करेंगे, और जप भी कितना, यदि हम 16 माला के लिए भी ये नियम अप्लाई करते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 300,000 नाम जप के लिए किया था, हम 16 माला जप के लिए भी यदि ये नियम का पालन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तब हम समझेंगे कि वास्तव में हम उस स्तर पे आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। अर्थात सुबह सुबह उठते से पहले 16 माला जप करना। इसका अर्थ यह है जब हम बहुत अच्छे से जप करेंगे तो अपने आप जो मैं शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं इसका अनुभव होते जाएगा। ये सारे संत महात्माओं ने यही किया है। अब इसमें दूसरा शब्द उन्होंने कहा है इस श्लोक में, दुखेश्व उद्विग्न मनः। तो इससे यह पता चलता है कि मृत्यु जैसे दुख के समय भी जो कृष्ण भावना भावित होता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो व्यक्ति मृत्यु जैसे दुख के समय में भी उद्विग्न नहीं होता। कई हम लोगों के मृत्यु देखे हैं अंतिम समय में, कुछ कुछ लोग तो ऐसे चिल्लाते अरे बचाओ बचाओ कुत्ते भौंक रहे हैं आ रहे मेरे ऊपर। कोई बोलता अरे हटाओ चींटियां सारे शरीर पे मेरे चींटियां चढ़ गई, हटाओ हटाओ इनको हटाओ। कुछ नहीं होता है पर उनको सब दिखता है। ऐसा देखिए अनेक प्रकार की मृत्यु को हमने देखा है पास में, अनेक लोगों को पास में जाके अंतिम समय तक देखा। कोई जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये उसको कहते हैं उद्विग्नता, दुख की उद्विग्नता। वो सब कॉन्शियस में बैठ जाता है परंतु कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता है। अंतिम परीक्षा मृत्यु तो सबकी है ना, कोई डला है बिना मृत्यु से, सबको मृत्यु आने वाली है। अंतिम समय ये अंतिम फाइनल एग्जाम, ऐसे बहुत सारी एग्जाम होती है लाइफ टाइम में पर फाइनल एग्जाम जो होती है वो क्या है, मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय में भी कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति उद्विग्न नहीं होते, उस एग्जाम में तो वो मेरिट में आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है जितनी भी एग्जाम्स जीवन भर में होती है वो सारी परीक्षाओं में ये पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल को वो जानते हैं, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं। फिर दूसरे प्रकार का दुख क्या है, आधि भौतिक है ना, कौन सा है, आदि भौतिक दुख। अर्थात अन्य व्यक्ति के द्वारा या अन्य वस्तु के द्वारा दुख प्राप्त होना, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण हम दुखी होना। परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो क्या सोचता है, वो सोचता है उसको जो कुछ भी दुख आया है वो दुख का कारण वो स्वयं ही है। कभी तो भी पहले उसने कुछ तो गड़बड़ किया है कुछ तो मिस्टेक किया है, कुछ तो किया है जिसके कारण अभी वो उस दुख को भोग रहा है। जैसा भोगे वैसा पाओगे, वो जैसा उगेगा। तो हमने कुछ पुराने समय में ऐसा कुछ कर्म किया है जिसके कारण हमको यह दुख भोगना पड़ रहा है, ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सोचता है। अपने ही कर्म को वो दोष देता है, दूसरों को वो दोष कभी भी नहीं देता है। एक बार प्रभुपाद जी देश में प्रवचन कर रहे थे और एक बंगाली बाबू, बंगाली व्यक्ति उनके परिचित हो गए थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी ऐसे प्रवचन कर रहे थे तो अचानक वो प्रवचन में उठ के खड़ा हो गया विदेश में और जोर जोर से प्रभुपाद जी को कहने लगा, तुम लोग भागो यहां से, क्यों आए हो यहां पे कृष्णा 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 कर रहे हो, निकलो यहां से। प्रभुपाद जी को ऐसे कह रहा है, सोचो प्रवचन में, अकेले में नहीं प्रवचन में, पूरी सभा बैठी है और उस सभा में वो ऐसे कहता है, निकलो जाओ यहां से। प्रभुपाद जी उसको कुछ नहीं कहे, वो प्रवचन हो गया। परंतु जब प्रभुपाद जी वापिस भारत में आने के लिए आ रहे थे उसने यही कहा था प्रभुपाद जी को, निकलो यहां से, तुम जाओ इंडिया में, इधर भी आके तुम क्या कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, तुम अपने देश में चले जाओ, निकलो तुरंत भारत में चले जाओ, ऐसा जोर से चिल्ला चिल्ला के बोला प्रभुपाद जी। तो जिस दिन प्रभुपाद जी भारत के लिए आ रहे थे वापस, उस दिन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि वो बंगाली बाबू को बुलाओ। सारे शिष्य हैरान हो गए। उन्होंने उनको बुलाया, उनको बुलाया और प्रभुपाद जी के सामने वो आए और प्रभुपाद जी ने उनको बड़ा प्रेम से प्रणाम किया, आप कैसे हैं वगैरह पूछा, और बहुत ही प्रेम से उनको कहा कि मेरे से कुछ गलती हो तो माफ कर देना, आपके कहने के अनुसार मैं आज भारत जा रहा हूं। आप बोल रहे थे जाओ, तो आपके कहने के अनुसार मैं भारत जा रहा हूं। सारे शिष्य ये देख रहे, उनको बड़ा अचंभा हुआ कि प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति को बुलाए क्यों, पहली बात तो, और बुला के ऐसी क्यों बातचीत करें। तो एक शिष्य ने उनको पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ऐसे क्यों किया आपने, वो व्यक्ति इतना ऐसा आपको इतना बोला प्रवचन में और आपने उसी को बुलाया, उसका इतना आदर सत्कार किए और ऐसा क्यों किया। बोले वो मुझे जो बोला है उसका भी कारण है, वो जो कुछ भी मुझे दुख दिया है, जो कुछ भी मुझे बोला उसका कारण है, क्योंकि कोई जन्म में मैं उसको बोला होगा कुछ ना कुछ, पिछले जन्म में मैंने उसको ऐसे ही कुछ बोला होगा, इसलिए इस जन्म में उसने मुझे बोल दिया, तो मेरा कर्जा निकल गया, मेरे ऊपर सर पे कर्जा था ना, मैं यदि किसी को कुछ बोल दूं तो उससे जो फल प्राप्त होता है तो वो तो मेरे सर पे कर्जा चढ़ गया, तो उसने तो एक तरह से यहां आके मुझे जो बोल दिया मेरा कर्जा मिटा दिया, कर्जा चुकता कर दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो क्या है, अन्य व्यक्ति के द्वारा भी यदि कुछ दुख दिया जाता है तो वो ये समझता है कि क्योंकि मैंने ही कुछ जन्म में ऐसे कुछ खराब कर्म किए होंगे जिसके कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है और यह व्यक्ति मुझे प्रताड़ित कर रहा है ना। तो तीसरा दुख कौन सा है, आधिदैविक। आधिदैविक अर्थात प्राकृतिक दुख, सुनामी आधिदैविक, बारिश ही नहीं होना, सूखा पड़ना, या इतनी बारिश होना कि बह के चले जाना है, भूकंप होना, धरणी कंप होना, ये सब क्या है, प्राकृतिक दोष है। प्राकृतिक दोष अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले दोष। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो एक बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्या ये संसार जो है वो क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम। भगवान ने एक बिल्डिंग बांध के खड़ी की है बहुत बड़ी, जैसे हम भी बांधते हैं बिल्डिंग और उसको भी हम नाम दे देते हैं स्वर्ग। लोगों को स्वर्ग की बहुत क्रेज है, स्वर्ग के प्रति बहुत अट्रैक्शन है, तो घर का नाम रखते हैं स्वर्ग, स्वर्ग रखते हैं। इस प्रकार से भगवान ने भी ऐसा ही घर बांध दिया, इतना बड़ा, इतनी बड़ी वास्तु की निर्मित की, उन्होंने उस घर का नाम रख दिया, क्या रख दिया, दुखालयम अशाश्वत। उस घर का वो स्वभाव दुखालयम अशाश्वत, ये भक्तगण जानते हैं कि ये क्या है, दुखालयम अशाश्वत, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्षण बारिश आ सकती है, कोई भी क्षण आंधी हो सकती है, कोई भी क्षण कुछ भी हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान क्या करते हैं, छोटा सा बालक, समुद्र के किनारे बालक को, बच्चे को ले गए खेलने के लिए रेत में समुद्र की, तो वो बच्चा समुद्र की रेत में खेलता है, क्या खेलता है, वो बहुत अच्छा रेत का घर बांधता है, भी देखा है आपने, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्या वो रेत का घर बांधना। मान लो 2 घंटे के लिए आप समुन्द्र किनारे है तो 2 के 2 घंटे तक वो क्या करते हैं, वो घर ही बांधते हैं रेत का। और जब उनको लगता है कि अब बस हो गया तो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। हमारे भगवान भी कौन है, इधर बैठे कौन है, लाला है छोटे से छोटा सा बालक है, पूरे ब्रह्मांड का निर्मिति करते हैं खेलने के लिए हम क्या बोलते, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, फॉर द प्लेजर ऑफ भगवान, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता क्या है, ऐसे खेल निर्मिति करते हैं, खेलते हैं, बड़ा उनको आनंद आता है खेलने में, और तोड़ने में भी आनंद आता है बच्चों को तोड़ने में भी आनंद आता है, जितना बांधने में आनंद आता है उतना तोड़ने में भी आनंद आता है। तो भगवान भी इसी प्रकार से खेल करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में माया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चलती है। तो भगवान को जैसी इच्छा होती है वैसा वो करते हैं, और हमारे कर्म फल सिद्धांत के अनुसार, कर्म धर्म संयोग के अनुसार हमको उसके फल भोगने। पर यह बात को भक्तगण बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है। सारे जीव को कुछ ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब दूसरा शब्द इस श्लोक में है, सुखेषु विगतस्पृह, जो व्यक्ति सुख में आसक्त नहीं होता। जो व्यक्ति सुख में आसक्त नहीं होता, सुख में आसक्त होना मन का स्वभाव है, जीव का नहीं। मन को जो अच्छा लगता है उसमें आसक्त हो जाता है, जो चीज का टेस्ट आ गया वही चीज खाने की इच्छा हो जाती है दिन रात। कोई एक चीज के से कभी भी जीव का समाधान नहीं होता है, मन का। पेट तो तृप्त हो जाता है परंतु मन तृप्त नहीं होता, इसलिए खाते रहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे प्रभुपाद जी जो जैसे कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने ऐसी विधि सिखाई है, प्रभुपाद जी ने भक्तों को ऐसी विधि सिखाई है कि भक्त लोग उसी में, उस विधि में रह के ही सुख का अनुभव करते हैं। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के ही सुख का अनुभव करते हैं। भगवत भक्ति में भक्ति को ही सुख का मानते हैं, है ना, सही बात प्रूफ है तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा, अर्थात वो जो भक्त होते हैं उनको कृष्ण भावनामृत में रहना, अर्थात कृष्ण के विषय में चर्चा करना, कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण के विषय में बोलना, यही अच्छा लगता है, इसी में सुख की अनुभूति होती है। अर्थात उनके वाणी में, उनके बोलने में, उनकी भाषा में स्वार्थ नहीं होता, लोलुपता नहीं होती, शुद्धता होती, निस्वार्थ रहता है, भाषा में प्रेम उमड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना को ही या कृष्ण भक्ति को ही सुख मानते नहीं, जानते भी है और मानते भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कई लोग पूछते हैं कि कृष्ण भक्त जो होते हैं, कृष्ण भावनामृत वाले लोग, हरे कृष्णा वाले, कुछ करते खाते धरते नहीं, फिर भी हमेशा सुखी दिखते। हम दिन भर मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी हमको सुख का अनुभव नहीं होता। ऐसा हमको बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, हमको बहुत लोग पूछते प्रभु जी आप क्या करते हैं, बोलते कुछ नहीं। या आप कुछ नहीं करते बड़े सुखी लगते हो। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, ये भक्ति की महिमा है। बहुत सारे भक्तों का यह अनुभव है, भक्तों को पूछते कुछ नहीं करते भक्त लोग पर फिर भी सुखी दिखते हैं। और बाकी लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करके ये जोड़ वो जोड़, बड़े बड़े बंगले बना, ये कर वो कर, सब करते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हम परिश्रम ही कर रहे केवल, बस सुख तो कभी मिला ही नहीं। तो ये जो होता है, इसमें कहा है ना ये कि सुखेशु विगत स्पृह, क्योंकि कृष्ण भावना मृत जो लोग होते हैं, अर्थात ये जो लोग होते हैं स्थित प्रज्ञ लोग, वो भक्ति को ही सुख मानते हैं, कृष्ण प्रेम को ही सर्वोत्तम सुख मानते हैं, और क्योंकि इस बात को वो सुख मानते हैं इसलिए उसी के विषय में बोलना उनको सुख देता है, उसी के विषय में चर्चा करना, उसी के विषय में बोलना उनको आनंद देता है, दुख नहीं देता है। ध्यान रहे हम कौन से प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, कौन से प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, क्या बोलता है। हाँ, जो स्थित प्रश्न होते हैं वो क्या बोलते हैं, तो हमने उत्तर में कहा था, वो पहले ही कहा था, उसके पहले क्या कहा था, कृष्ण कथा बोलते हैं। तो क्यों कृष्ण कथा बोलते हैं उसके ये उत्तर चल रहे हैं, अर्थात चर्चा क्या हो रही है पता चल रहा है ना आपको। चर्चा ये हो रही है कि वो लोग कृष्ण के विषय में क्यों बोलते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। इतने सारे दुख होते हुए भी वो कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है दुख कैसे होते हैं, शरीर को दुख होते हैं, मन से दुख होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रश्न को मत भूलिए, प्रश्न को ध्यान में रखिए, नहीं तो लिंक टूट जाएगी, क्या चल रहा है ये सब। तो इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, अस्थित प्रज्ञ व्यक्ति भगवान की भक्ति में सुख का अनुभव करता है, इसलिए उनके विषय में बोलते वक्त भी उसको सुख का अनुभव होता है, इसलिए वो कृष्ण के विषय में बोलते रहते हैं। फिर तीसरी बात इसमें क्या कही गई है, वितराग भय क्रोध। वितराग भय क्रोध मतलब वो व्यक्ति कैसे होते हैं, भय राग भय और क्रोध तीनों से मुक्त रहते हैं। वितराग भय क्रोध इन तीनों बातों से मुक्त होते हैं। राग अर्थात क्या है, आसक्ति, राग अर्थात आसक्ति, वो लोग आसक्त नहीं रहते, आसक्ति से मुक्त रहते। उन लोगों को केवल एक ही आसक्ति होती है, स्थिर, जो स्थिर है, जो विषय स्थिर है, जो व्यक्ति स्थिर है उसी के विषय में उनको आसक्ति रहती है, बाकी चीजों को केवल वो कृष्ण अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के उपदेशों का पालन करने के लिए जो कुछ भी वस्तुएं उपयोग में लाई जा सकती है उन सब को वो केवल उपयोग में लाते हैं, उससे आसक्त नहीं होते, वस्तुओं से आसक्त नहीं होते, उपयोग में। बहुत बारिश हो रही है परंतु मान लो आकाश में चंद्र है, अभी तो देख नहीं पाएंगे आप, पर समझ लो कि वो चंद्र है आकाश में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो आकाश में चंद्र है, मुझे दिख रहा है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, वो देखो आकाश में चंद्र है ऐसा दिखाऊंगा आपको, दिखेगा नहीं दिखेगा, मुझे बोलना पड़ेगा आपको। आपके लेफ्ट साइड में देखिए एक पेड़ है, दिख गया, पीपल का पेड़ है, दिख गया। वो पेड़ के एकदम टॉप पे देखिए, देख लिया, टॉप पे देखा। अब लेफ्ट, वो टॉप से लेफ्ट साइड में सीधा आकाश में देखिए, टॉप के लेफ्ट साइड से सीधा आकाश में, हाँ मून दिख गया, दिख गया, हाँ दिख गया। जब आपको मून दिख जाता है, चंद्रमा जब आपको दिख जाता है, तो चंद्रमा दिखने के बाद वो पेड़ को आप ध्यान में रखते हैं क्या? अरे आपको चंद्रमा दिख गया है, अब वो चंद्रमा से आप आसक्त हो जाएंगे, पेड़ से नहीं, है कि नहीं? ये पूरे प्रकृति की निर्मिति वो पेड़ के भांति है। पूरी प्रकृति वो चंद्रमा को देखने का एक साधन है। सांसारिक विषय, सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक व्यक्ति, सब कुछ, इन सारी बातों का अरेंजमेंट इसलिए किया गया है क्योंकि इनका उपयोग करके तुम चंद्रमा को देखो, अर्थात भगवान को देखो। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है? मैंने कहा आपके लेफ्ट साइड में एक वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, मैंने कहा ये पेड़ है, इसका उपयोग हमको चंद्र को देखने के लिए है, पर जैसे मैंने कहा कि ये पेड़ है, एक वृक्ष है, और आपने देखा और आप कहने लगे अरे कितना सुंदर वृक्ष है। अब मैं कह रहा हूं अरे ऊपर देखो, बोले नहीं ये वृक्ष ही बहुत अच्छा है, इसी में मन लग गया हमारा, कितना बढ़िया पेड़ है, इसी में मन लग गया, अभी क्या ऊपर देखिए और चंद्र को देखिए, कितना अच्छा पेड़ है, कितनी अच्छी छाव देता है। आसक्ति, विषयों के प्रति राग, राग अर्थात आसक्ति, जिसके लिए ये सारा भंडार है, ये सारी प्रकृति है, इन सब का उपयोग करके धीरे 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 ऊपर चढ़ के ऊपर की ओर देखना है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये मन इन्हीं वस्तुओं में आसक्त तो हो जाता है। यहां कहा है वितराग भय क्रोध, इनको आसक्ति हो जाती है और आसक्ति के कारण ये उसी में फंसे रहते हैं। परंतु जो स्थित प्रज्ञ है उनको केवल एक ही आसक्ति होती है, कौन सी? उनको आसक्ति होती है भगवान के नाम की, भगवान की, इसलिए इन सारे वस्तुओं का उपयोग करके जब वो उनका अनुभव करते हैं भगवान का, तो उसी में आसक्त हो जाते हैं। और जब वो उनमें आसक्त, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु में आसक्त हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में जब आसक्त हो जाता है, तो दिन रात वही बात करता है ना, और उसी बात में उसको आनंद आता है। कोई भी विषय वस्तु में हम आसक्त हो जाए, उसी विषय वस्तु या व्यक्ति की हम बातचीत करते रहते हैं। पर ये लोग जो होते हैं वो ऐसे विषय वस्तु में आसक्त हो जाते, भगवान में आसक्त हो जाते, ये सारे प्रकृति का उपयोग करते हैं भगवान का अनुभव करने के लिए, भगवान के नाम का अनुभव करने के लिए, और वो अनुभव करके उसमें आसक्त हो जाते हैं। और जब वो उसमें आसक्त हो जाते हैं, तो जब जिसके विषय में हम आसक्त होते हैं उसी के विषय में बोलते रहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्ण के विषय में बोलते रहते हैं। प्रश्न क्या है, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, आसक्त हो जाते, कैसे आसक्त हो जाते हैं, सारे प्रकृति का उपयोग करते हैं वो भगवान को समझने के लिए, भगवान के नाम को, लीला को, गुणों को समझने के लिए सारे प्रकृति का उपयोग। राग उनमें है, दोनों की तुलना है, जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार से आसक्त होते, जो अभक्त होते हैं वो ये पेड़ को देख के उसी में फंस जाते बेचारे, बहुत अच्छा लग रहा है। पेड़ को देखने के लिए जाते, नीचे सफेद दीवार दिखते, बोलते क्या बढ़िया है दीवार, कौन सा सीमेंट लगाया इसमें, कौन से कंपनी का है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, फंस गए उसमें। तो यह फर्क है राग, फिर है भय, बड़ा भयानक बीमारी है। राग और भय, तो वितराग भय क्रोध, ये जो भय जो है ये हमारा नित्य साथी है, ये हमारा बहुत अच्छा फास्ट फ्रेंड है, नित्य संबंध बनाए बैठा है अपने साथ, खाते वक्त हमारे साथ रहता है, पीते वक्त हमारे साथ रहता है, चलते वक्त हमारे साथ रहता है, काम करते वक्त, सोते वक्त, फिरते वक्त, उठते बैठते चलते फिरते 24 आवर्स, इतना अच्छा हमारे साथ दोस्ती बनाया है। इतना हमारे साथ रह रह के उसने क्या किया है, हमारे साथ इतनी घनिष्ठता बनाई है, घनिष्ठ संबंध बनाए हैं, और उसने इतने घनिष्ठ संबंध बनाने के कारण हमने उसको सारी पावर दे दी, वो भय को हमने सारी पावर दे दी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो भय को हमने सारी पावर दे दी, अब यही जो भय हमारा साथी था, अब ये भय हमारा मास्टर बन गया है कि नहीं, हमारा स्वामी बन गया भय, देखते हैं हम संसार में भय बन गया है। और भय क्यों उत्पन्न होता है, मैं का भाव, मैं हूं, मैं के भाव को जब धक्का लगता है या धक्का लगने का अंदेशा अंदाज हो जाता है, तब क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। मैं क्या हूं, मैं सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूं, मेरे से दूसरा कोई धनी होना ही नहीं चाहिए इस संसार में, नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करता हूं, गैम्बलिंग करता हूं, जो नहीं वो सारे कार्य करता हूं, मैं का भाव है। क्योंकि भय ये है कि दूसरा मेरे से धनी ना बन जाए, तो मैं के भाव को जब धक्का, मैं का भाव अर्थात क्या, मैं शरीर हूं, यह भाव अहंकार, मैं शरीर हूं यह भाव, जब मैं शरीर हूं इस भाव से मैं रहता हूं तो मेरा अहंकार बढ़ते रहता है, और फिर वो अहंकार को मुझे मेंटेन करना पड़ता है, यदि कोई उसको धक्का पहुंचाता है तो मुझे बड़ा, मैं बड़ा भयभीत हो जाता हूं। वास्तव में देखा जाए तो भय क्या है, भय का अस्तित्व केवल मन में है, ऐसा भय वगैरह कुछ है नहीं, केवल मन में ही कुछ विचार है जो हमको भयभीत करते रहते हैं, दूसरा कुछ। और विचार क्या है, विचार क्या है, विचार भविष्य के बारे में, आगे क्या होगा, इसलिए भयभीत रहते हैं, और आगे क्या होगा इस बात से चिंता रहने के कारण हम 24 आवर्स भय के परिस्थिति में पड़े रहते हैं। परंतु भय को यदि, इसलिए कहा जाता है कि भय को यदि दूर करना है, कोई व्यक्ति भयभीत है तो, भयभीत है तो उस भय को दूर करना है तो वो क्या प्रयास करता है, दूसरों के साथ लड़ाई लड़ता है, दूसरों के साथ स्पर्धा करता है, दूसरों को पीछे गिराने का प्रयास करता है, नीचे गिराने का प्रयास करता है, फिर भी उसका भय नहीं जाता है, भय जाता है, एक को नीचे गिराया दूसरा उत्पन्न हो जाता है, कितनों को नीचे गिराया, भय जाएगा नहीं जाएगा, भय इस प्रकार से खत्म नहीं हो सकता है। भय को खत्म करने के लिए दूसरों के साथ लड़ने की आवश्यकता है, भय को यदि खत्म करना है तो अपने मन के साथ लड़ो, भविष्य की चिंता सता रही है अपने मन का दोष है, मन के साथ लड़ो, दूसरा कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार है, हमारा मन जिम्मेदार है, और मैं का भाव मतलब मैं शरीर हूं, बस
इसलिए भय से दूर होना चाहिए। और सबसे बड़ा भय जो है, उस भय के विषय में तो हमको चिंता ही नहीं है। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा भय क्या है? जन्म मृत्यु का चक्र। लेकिन वास्तव में उसकी तो हम कोई चिंता भी नहीं करते हैं। अर्थात हमारा भय जो हमारे पीछे पड़ा है 24 आवर्स, वो भय भी झूठा है, वो भय भी भ्रम है। और वास्तव में जो भय है उसके विषय में विचार भी नहीं है। भय भयभीत हो गए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे। तो भयभीत नहीं होना चाहिए, भय से दूर रहना चाहिए। भय केवल मन का विचार है और भय केवल भविष्य की चिंता है, और वो केवल मैं शरीर हूं इस भाव, यह भाव होने के कारण व्यक्ति को भय उत्पन्न होता है। अन्यथा कोई भय नहीं है संसार में। भय केवल एक ही है कि मैं अगले जन्म में कुत्ता न बन जाऊं। नहीं, क्या होगा, कुत्ता बन गया और ऐसा बारिश गिर गया, कहां जाऊंगा? है कि नहीं? भूख लगेगी, कोई खाने को नहीं देगा, भयंकर बारिश, ओले गिरेंगे। जम्मू कश्मीर में कुत्ता बन गया तो और परेशानी, ओले गिरेंगे, बड़े बड़े बर्फ, है कि नहीं? ये भय का ये मुख्य भय है, मेन डर ये है। और ये सही डर है, तो इसलिए वो चिंता करनी चाहिए। परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, स्थित प्रज्ञ, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को यह पता होता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। तो शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा अजन्मा है, ना उसको मृत्यु है, तो उसको भविष्य की चिंता सताएगी क्यों? भविष्य की चिंता तो उनको होती है जो ये सोचता है कि मैं शरीर हूं, शरीर का क्या होगा। और वो सोचता है कि मैं आत्मा हूं, यदि मैं आत्मा को संतुष्ट करूंगा तो शरीर अपने आप ठीक रहेगा। और केवल आगे बुढ़ापे में ही नहीं, तो पूरे अनेकों योनियों में मेरा शरीर सही रहेगा। केवल ये योनि का सोचना थोड़ी होता है, आगे के भी योनियों का सोचना पड़ेगा, किधर जाना है, क्या करना है, वो भी तो भय है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो लोग इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में नहीं पड़ते, और इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में नहीं पड़ने की वजह से उनको अहंकार नहीं होता है, मय का भाव नहीं होता है, शरीर के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं होते हैं, और यह सब कारणों के कारण होने के कारण उनको भय नहीं होता है। और भय नहीं होने के कारण वो बड़े शुद्धता से बिना कोई आवेग से कृष्ण के विषय में बोल सकते हैं। परंतु कोई व्यक्ति भयभीत है तो कृष्ण के विषय में क्या बात करेगा, वो स्वयं भयभीत है। उसको स्वयं को इतना भय है तो कृष्ण के विषय में चर्चा नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि भय होता ही इसकी वजह से कि वो ये समझता है कि वो शरीर है। जब कोई व्यक्ति ये समझता है मैं शरीर हूं, तो कृष्ण के विषय में क्या चर्चा करेगा? इसलिए जो भक्त होते हैं वो भयभीत नहीं होते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो शरीर नहीं है, उनको इंद्रिय तृप्ति से ही केवल कोई लेना देना नहीं है, वो आत्मा है, और इसलिए उनको कोई भय नहीं है, और इसलिए वो पूरी तत्व के साथ कृष्ण के विषय में चर्चा कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण के विषय में उनको भय नहीं होता। फिर है क्रोध वितराग भय क्रोध। वैसे बारिश में आप घर पे तो जा नहीं पाएंगे, 10 मिनट और लेते हैं। वितराग भय क्रोध, अब क्या है क्रोध? हाँ, क्या है क्रोध? सबको, सब जानते हैं इसको, लेकिन सबको इसका अनुभव है क्रोध। इंद्रिय तृप्ति में बाधा होने से क्रोध आता है कि नहीं? इंद्रिय तृप्ति में कभी कोई बाधा आ जाती है
जब वो बाधा आ जाती है तो बड़ा क्रोध आ जाता है, परंतु कृष्ण भावना भावित जो होते हैं वो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त नहीं रहते, इसलिए उनका क्रोध पे नियंत्रण होता है। इंद्रिय तृप्ति में अति आसक्त व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी हो सकते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, और क्रोध एक भयंकर बीमारी है, बड़ा महारोग है। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, क्रोध के कारण शक्ति विवेक और बुद्धि का हरण होता है। क्रोध के कारण शक्ति बुद्धि और विवेक इनका हरण होता है और यह क्षणिक पागलपन है। कोई व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो समझना क्या है, थोड़े एक दो क्षण के लिए व्यक्ति क्या हो गया, क्या हो गया, सब मानते हैं। यदि सब मानते हैं तो कोई पागल होना पसंद करेगा, तो कभी क्रोध मत कीजिए, किसी पे भी कभी क्रोध मत कीजिए। क्रोध की परिस्थिति उत्पन्न होती है वहां से चले जाइए, इससे हमारा ज्यादा नुकसान होता है। दूसरों का कितना होता है हमको पता नहीं, हमारा ज्यादा नुकसान होता है। क्रोध यह क्षणिक पागलपन है, मैडनेस, उसमें व्यक्ति अपने सारे विवेक शून्यता हो जाती है। और इसकी विशेषता क्या है, जैसे अचानक आ जाता है, ऐसा आपको सुबह 8 बजे ऐसा पता नहीं होता है कि आप शाम को 6 बजे क्रोधित होंगे करके। ऐसा पता होता है आप कि आज शाम को 6 बजे मैं बड़ा क्रोधित होगा। ये क्या है, अचानक आ जाता है और सारा तहस नहस करके चला जाता है। तूफान कैसा आता है उधर विदेशों में, वेस्टर्न कंट्री, वर्लपूल भयंकर आता है, ऐसे टॉर्पेडो क्या क्या कहते हैं उसको, ऐसा लगता है वाह बहुत बढ़िया वातावरण है, आज तो घूमने जाएंगे, बढ़िया है, सब क्लियर है, क्लीन है, सब बढ़िया है, और अचानक से आ जाता है और पूरे घर को, सारे घरों को उध्वस्त कर देता है, अचानक आ जाता है। वैसे ही ये क्रोध क्या करता है, ये एक बहुत बड़ा तूफान है, अचानक आ जाता है और पूरे पर्सनालिटी को खत्म करके चला जाता है, पूरे पर्सनालिटी को डिस्टर्ब कर देता है, खत्म कर देता है और चला जाता है। नहीं, पर्सनालिटी को कैसे डिस्टर्ब करता है, मान लो मुझे क्रोध आ गया, एकदम हा 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 किया, अब वो जिसको हा हा किया वो चला गया, सब हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में अभी तक वो बात है, मेरा मन मेरी बुद्धि पूरी उसी में लगी है, पूरी एनर्जी भी उसी में, वही विषय में लगी है कि नहीं, तो पूरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया ना। तो इस प्रकार से ये क्रोध को हकाल देना चाहिए, क्रोध से क्रोधी व्यक्ति के ज्यादा दोस्त नहीं होते, मित्र नहीं होते हैं। आप देखिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है ना तो उसको ज्यादा मित्र नहीं होते। मोहम्मद पैगंबर भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं जन्नत उन्हीं को मिलती है जो अपने क्रोध पे नियंत्रण करते हैं, जो अपने गुस्से को, जन्नत उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने गुस्से को काबू में करते हैं। सारे सारे संसार के जितने फिलोसोफर है सब ये कहते हैं, जितने तत्वज्ञ है पूरे संसार के, वो सब इस बात को मानते हैं कि क्रोध मतलब आपको मुक्ति, जन्नत यानी मुक्ति, जन्नत ये जन्नत जन्नत उन्हीं लोगों के लिए है जो गुस्से को काबू में करते हैं, उन्हीं को जन्नत मिलती है, अर्थात मुक्ति मिलती है। तो सोचो यदि हम क्रोध करते हैं तो क्या फायदा, सब कुछ करके यदि क्रोध करते हैं तो क्या फायदा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए क्रोध पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मूर्ख मनुष्य अपने क्रोध को जोर जोर से प्रकट करता है ना, मूर्ख मनुष्य अपने क्रोध को बहुत जोर जोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान मनुष्य शांति से अपने क्रोध को वश में करता है। कभी कोई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो मूर्ख मनुष्य जो होता है वह 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 रुकता ही नहीं, 10 लोग अरे रुको भाई, अरे बस करो, हा जितना बोलेंगे रुको उतना ज्यादा जोर चढ़ता है। और फिर लोग बाद में वो स्वयं लोगों को बोलता है, देखो मुझे कितना गुस्सा आता है, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मुझे बहुत होशियार आदमी हूँ मैं, बहुत गुस्सा आता है मुझे। कुछ कुछ लोग तो बड़े बहुत प्रेम से बड़े गर्व से बोलते हैं, मेरा स्वभाव जरा गुस्सेला है, हाँ मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है, सहन नहीं होता है मुझे, और बड़े गर्व से बोलते हैं इस बात को। लेकिन ये तो मूर्खता का लक्षण है। तो हम अभी समझना चाहिए, कोई ऐसा बोले तो मन ही मन में कितना मूर्ख है ये, क्योंकि कहते नीति शास्त्र कहता है, नीति शास्त्र में बताया गया है, नीति शास्त्र अर्थात जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तत्वज्ञ लोग जिस बात को कहते हैं, कह गए, उस मनुस्मृति का भी कुछ उसमें आता है। तो जो मूर्ख होते हैं वो अपने क्रोध को जोर जोर से प्रकट करते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वो शांति से अपने क्रोध को वश में करते हैं, शांति से। तो हम बुद्धिमान होने का प्रयास करेंगे, मूर्ख क्यों बनेंगे। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो कृष्ण भावनामृत होते हैं, एक्चुअली क्रोध का मुख्य कारण क्या है, इंद्रिय तृप्ति। कृष्ण भावनामृत जो लोग होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति से आसक्त नहीं होते हैं, वो भगवत भक्ति से आसक्त होते हैं, और भगवत भक्ति से आसक्त होने के कारण उनका क्रोध, उनको क्रोध नहीं होता है। और जो क्रोध कभी होता भी है मान लो, तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है, इसलिए उस क्रोध से सारे समाज का कल्याण होते रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया, तो किस लिए क्रोध आया, राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करने के, और वो प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी तो सारे संसार का कल्याण होगा, है कि नहीं। तो उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो ये जो होते हैं, जो कृष्ण कथा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये कभी क्रोधित नहीं होती। जो क्रोधित होता है वो कृष्ण कथा नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चौथा पॉइंट है, स्थितधीर मुनि रुच्यते, अर्थात ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। कौन होता है ऐसा व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला मुनि। मुनि का अर्थ है जो मौन धारण करता है, या जो मन के ऊपर नियंत्रण करता है, अनेक अर्थ है, या जो मननशील है, जो मनन चिंतन, मनन मन में उसका चिंतन करते रहता है, उसको मनन कहते हैं। तो मुनि स्थितधीर मुनयोर उच्यते, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। अर्थात मुनि अर्थात जो मननशील मौन धारण भी करता है, वो क्या करता है, मौन धारण करता है। कैसे मौन धारण करता है, तो जब ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति, अस्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जब राग भय और क्रोध वाले विषयों की चर्चा चली चलती रहती है, तब उस विषय के प्रति जब बोलने का समय आता है तो वो क्या करता है, मौनी बाबा बन जाता है। कोई आसक्ति के विषय हो, कोई द्वेष के विषय हो, कोई क्रोध के विषय हो इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ये व्यक्ति क्या करता है, मुनि बन जाता है। मुनि अर्थात मौनी बाबा मौन व्रत का पालन करता है, बस कुछ नहीं बोलेंगे। और जब कृष्ण भावना भावित, कृष्ण के विषय में बोलने का जब अवसर प्राप्त होता है, तो मानो हजारों मुखों से बोलने का प्रयास करता है। क्या करता है, हजारों मुखों से बोलने का प्रयास करता है, मतलब इतनी तत्परता से, इतनी तल्लीलता से कृष्ण के विषय में बोलता है, ये मुनि है, उसको मुनि कहते हैं। और भगवान इसी को कह रहे, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। तो उदाहरण भी हमारे पास है, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को कितनी फिलोसॉफी सुनाई गई हिरण्यकश्यपु के द्वारा, कितना तत्व, तथाकथित तत्व, और हिरण्यकश्यपु ने जो शिक्षक दिए थे उसको दो, शंड और अमर, उन्होंने क्या सिखाया उसको, उन्हें सिखाया क्या, सिखाया हिरण्यकश्यपु भगवान है, वो सारे संसार के स्वामी हैं, सारी देवी देवता उनके सेवक हैं। इस प्रकार से वो लोग सब इनको प्रहलाद महाराज को सिखाते थे। तो प्रहलाद महाराज क्या बन गए थे उस समय? वो मुनि बन गए, चुपचाप, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, मुनि बन गए, मौन व्रत का पालन, कुछ नहीं बोले। और जब उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और जब उनको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, जब उनको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ प्रहलाद महाराज को, तो क्या बोले? ऐसे प्रकार से बोले मानो पूरे संसार को कृष्ण के महात्म्य का विषय में चर्चा करें, पूरे संसार को भगवान के लीला रूप गुण और नाम के विषय में बोल रहे, हजारों मुखों से बोल रहे, ऐसा उनको अनुभव हो। तो इस प्रकार से ये लोग होते हैं, जब बोलते हैं कृष्ण के विषय में ही बोलते हैं। क्यों कृष्ण के विषय में वो बोल सकते हैं? क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ मुनि होते हैं, अर्थात जब इतर विषय होते हैं तब वो मौन धारण करते हैं, इस इतर विषय के प्रति उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? क्या बोले? वही तो बोला ना मैं, हाँ ये प्रश्न होना चाहिए, भय तो होना चाहिए, यही तो बोला। क्या करना चाहिए इस भय से मुक्त होने के लिए? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बोलिए। कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति की जिसके विषय में चर्चा चल रही है, चित्त प्रज्ञ क्या करते हैं? वो लोग भय से मुक्त है जिनकी चर्चा हो रही है, वो लोग भय से मुक्त है, इसलिए वो क्या करते हैं? मुक्त क्यों है वो? क्योंकि वो बोलते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कृष्ण की कथा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको भय नहीं है। कौन सा भय नहीं है? भय क्या है? मुख्य भय जन्म मृत्यु का भय। उनको वो भय क्यों नहीं है? क्योंकि वो कथा करते हैं, कृष्ण के विषय में बोलते हैं, कृष्ण के विषय में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, बोलते हैं, अर्थात नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते हैं। ये पहले ही हो चुका है पहले के श्लोक में। नहीं हुआ है? जो भगवान के साथ संबंध को दृढ़ बनाता है उसको भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त को कोई भय नहीं है। इसलिए क्या करना है? भक्ति करना है, भक्ति ही। ये सब लक्षण भक्त के विषय में अर्जुन ने पूछे हैं, और भक्त में ये लक्षण इसलिए होते हैं क्योंकि इन सारे दुखों से वो परे होता है, और वो इसलिए परे होता है क्योंकि वो भक्त है, और भक्त क्या करते हैं? नाम रूप गुण लीला का चिंतन करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।